एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में चल रहे हैं जो बाहर से तो बहुत सीधी साधी लगती है, लेकिन अंदर उतरे तो ख्यालों का एक गहरा समंदर है। हम बात कर रहे हैं वर्जीनिया वुल्फ के उपन्यास मिसेस डेलोवे की।
और ये कहानी सिर्फ एक दिन की है, जून का एक दिन लंदन शहर में साल 1923।
बस एक दिन?
हाँ, लेकिन उस एक दिन में वुल्फ ने जैसे पूरी जिंदगी समेट दी है।
बिल्कुल। और देखिए, वर्जीनिया वुल्फ कोई आम लेखिका नहीं थी। वो उस दौर की थी जब दुनिया पहले विश्व युद्ध की तबाही से गुजर कर निकली थी।
हाँ, एक बहुत ही उथल पुथल का समय था।
हाँ, लोगों के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक कन्फ्यूजन का माहौल था, और वुल्फ ने उसी बेचैनी को पकड़ लिया।
उन्होंने कहानी कहने का एक नया तरीका भी तो अपनाया, जिसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं।
हाँ, मतलब वो हमें किरदारों के मन के अंदर ले जाती हैं।
बिल्कुल, जहां ख्याल, यादें, डर सब एक नदी की तरह बहरे होते हैं।
जैसे किसी के दिमाग के अंदर एक माइक्रोफोन लगा दिया हो, हम सिर्फ ये नहीं पढ़ते कि किरदार क्या कर रहा है,
बल्कि ये भी सुनते हैं कि वो उस पल में क्या सोच रहा है, और मिसेस डेलोवे इसी तकनीक का एक शानदार नमूना है।
तो चलिए इस कहानी के किरदारों से मिलते हैं। कहानी की धुरी है क्लैरिसा डेलोवे। तो कौन है वो?
क्लैरिसा एक 51 साल की सोशलाइट है, यानी ऊंचे तबके की महिला, और उपन्यास की जो पहली लाइन है वो तो खैर बहुत ही मशहूर है।
मिसेस डेलोवे ने कहा कि वो फूल खुद खरीदेंगी।
बिल्कुल, शाम को उनके घर पर एक बड़ी पार्टी है और वो उसी की तैयारियों में लगी हैं। अभी एक छोटा सा रोजमर्रा का काम लगता है ना, फूल खरीदना।
हाँ, बहुत ही मामूली सा काम है।
लेकिन वुल्फ इसी एक काम के जरिए क्लैरिसा की पूरी दुनिया हमारे सामने खोल देती हैं।
और ये दुनिया मुझे लगता है दो हिस्सों में बटी हुई है। एक बाहरी दुनिया जहाँ क्लैरिसा एक परफेक्ट मेजबान है, खूबसूरत, सलीकेदार, जिसकी पार्टी में प्रधानमंत्री तक आते हैं, और एक है उनके अंदर की दुनिया
जहाँ वो अपने फैसलों पर सवाल उठाती हैं, अपनी जवानी को याद करती हैं और सोचती हैं कि क्या वो वाकई खुश हैं।
ये जो अंदरूनी और बाहरी दुनिया का फर्क है, आज के सोशल मीडिया के दौर में तो ये और भी ज्यादा बड़ा हो गया है। नहीं,
क्या खूब का। क्लैरिसा डेलोवे एक तरह से 1920s की इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जैसी हैं।
सही बात है।
बाहर से सब कुछ परफेक्ट, पार्टी की तैयारी, खूबसूरत फूल, लेकिन अंदर एक खालीपन है, एक बेचैनी। वुल्फ उस वक्त ही इस दोहरी जिंदगी को पकड़ रही थी।
और इसी कहानी के साथ साथ एक और कहानी चलती है जो क्लैरिसा की दुनिया से बिल्कुल ही अलग है।
हाँ, ये कहानी है सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ की।
सेप्टिमस?
सेप्टिमस एक नौजवान है जो जंग से लौटा है। वो शेल शॉक का शिकार है,
जिसे आज हम PTSD कहते हैं।
बिल्कुल, जंग के खौफनाक मंजर उसकी आंखों के सामने से हटते ही नहीं है। उसे हर तरफ अजीब अजीब चीजें दिखती और सुनाई देती हैं,
और वो समाज की इस भागदौड़ भरी बेपरवाह दुनिया में खुद को फिट नहीं कर पाता। और मुझे ये बात हमेशा हैरान करती है कि क्लैरिसा और सेप्टिमस, जो कहानी के दो सबसे अहम सिरे हैं,
वो कभी मिलते ही नहीं।
कभी नहीं। वो एक ही दिन एक ही शहर में घूम रहे हैं, कभी कभी तो एक दूसरे के बहुत पास से गुजरते हैं, लेकिन अनजान रहते हैं। आपको क्या लगता है वुल्फ ने उन्हें अलग रखकर क्या हासिल किया?
ये एक बहुत ही पावरफुल फैसला था। अगर वो मिल जाते तो शायद कहानी बहुत साधारण हो जाती।
अच्छा,
उन्हें अलग रखकर वुल्फ ये दिखाती हैं कि समाज में हम एक दूसरे के कितने करीब होकर भी कितने अनजान हैं। एक ही शहर में एक इंसान पार्टी की तैयारी कर रहा है
और दूसरा अपनी जान देने की सोच रहा है।
हाँ, ये समाज पर एक बहुत तीखा कमेंट है। सेप्टिमस एक तरह से क्लैरिसा का अक्स है, उसका डबल।
अपने अंदर दबाकर जी रही है,
सेप्टिमस उसे बाहर जी रहा है और उसके बोझ तले वो टूट रहा है।
और इन दोनों के अलावा कुछ और भी किरदार हैं जो क्लैरिसा की जिंदगी की पहेलियों को पूरा करते हैं, जैसे पीटर वॉल्श।
पीटर वॉल्श जो क्लैरिसा का पुराना प्यार है, वो सालों बाद भारत से लौटा है। पीटर उस जिंदगी का प्रतीक है जो क्लैरिसा जी सकती थी अगर वो उससे शादी कर लेती। एक जिंदगी जो शायद ज्यादा भावुक होती, ज्यादा बेचैन,
लेकिन शायद ज्यादा सच्ची भी होती
शायद।
और फिर है क्लैरिसा के पति रिचर्ड डेलोवे, एक अच्छे इंसान, भरोसेमंद, लेकिन थोड़े बोरिंग और इमोशनली दूर।
वो सुरक्षित और पारंपरिक रास्ते के प्रतीक हैं जो क्लैरिसा ने चुना।
बिल्कुल। तो ये सारे किरदार अपनी अपनी दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन वुल्फ इन सबको एक ही दिन की डोर से बांध देती है। कहानी की शुरुआत तो बड़े ही आम तरीके से होती है।
हाँ, जब क्लैरिसा सुबह सुबह फूल खरीदने निकलती है, और जैसे ही वो लंदन की सड़कों पर निकलती है, उसका दिमाग यादों में बोते लगाने लगता है।
उसे अपनी जवानी के दिन याद आते हैं।
हाँ, बोल्टन में गुजारी गर्मियां, उसकी दोस्त सैली सेटन के साथ वो बेबाक पल, और तभी बिग बेन की घंटी बजती है,
घड़घड़ाती हुई भारी आवाज।
और ये घंटियां पूरी किताब में बार बार बजती हैं।
ये बिग बेन की घंटियां सिर्फ समय नहीं बताती है ना, ये बाहरी दुनिया का मतलब समाज का समय है।
सही कहा, एक ऐसा समय जो सबको एक ही लाठी से हांकता है, जो किसी के अंदरूनी एहसास की परवाह नहीं करता।
क्लैरिसा अपनी यादों में खोई है, लेकिन बिग बेन की घंटी उसे खींचकर वापस असलियत में ले आती है।
बिल्कुल, और तभी सड़क पर एक अजीब घटना होती है। एक शाही मोटरकार गुजरती है और उसका टायर फटता है या शायद बैकफायर होता है, एक जोरदार धमाका।
अच्छा।
और इस आवाज को क्लैरिसा भी सुनती है और पास के ही एक पार्क में अपनी पत्नी लुक्रेजिया के साथ बैठे सेप्टिमस भी सुनता है।
तो एक ही आवाज दोनों तक पहुंचती है।
हाँ, क्लैरिसा के लिए ये एक मामूली घटना है, लेकिन सेप्टिमस के लिए ये जंग के मैदान का धमाका है। वो बुरी तरह घबरा जाता है।
एक ही घटना दो लोगों पर कितना अलग असर करती है।
और जब क्लैरिसा घर लौटती है तो एक और धमाका उसका इंतजार कर रहा होता है।
वो क्या?
पीटर वॉल्श का अचानक आ जाना, 30 साल बाद।
ओह।
उनकी मुलाकात बहुत अजीब है। दोनों दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं, लेकिन उनकी आंखों में, उनकी बातों में वो पुरानी कशिश, वो अधूरापन साफ झलकता है। पीटर बात करते करते रो पड़ता है और क्लैरिसा के मन में तूफान उठ खड़ा होता है।
क्या उसने सही फैसला किया था? क्या वो रिचर्ड के साथ सच में खुश है? ये सवाल उसे दिन भर परेशान करते रहते हैं।
बिल्कुल, एक तरफ क्लैरिसा अपने अतीत से जूझ रही है और दूसरी तरफ सेप्टिमस अपने आज से।
दोपहर में उसकी पत्नी उसे लंदन के एक बहुत बड़े डॉक्टर सर विलियम ब्रैडशॉ के पास ले जाती है।
हाँ, और जब मैं इस डॉक्टर के बारे में पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है।
क्यों?
वो सेप्टिमस की इतनी गहरी तकलीफ को, उसके डर को बस अनुपात की कमी या लैक ऑफ प्रोपोर्शन कहकर खारिज कर देता है।
मतलब वो उसकी पीड़ा को समझता ही नहीं।
बिल्कुल नहीं, वो कहता है कि सेप्टिमस को अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीखना चाहिए। वो उसे उसकी पत्नी से अलग करके शहर से दूर एक मेंटल होम में भेजने की सलाह देता है।
उसके लिए सेप्टिमस की भावनाएं बस एक बीमारी है जिसे ठीक करने की दबाने की जरूरत है।
हाँ, वो उसे समझना नहीं चाहता, बस उसे कंट्रोल करना चाहता है।
तो क्या वुल्फ उस समय के मेडिकल सिस्टम पर सवाल उठा रही थी, या ये किसी भी तरह की सत्ता की आलोचना है जो इंसान की आत्मा को कुचलने की कोशिश करती है?
मुझे लगता है दोनों। सर विलियम ब्रैडशॉ उस पूरी व्यवस्था का प्रतीक है जो इंडिविजुअलिटी को, मतलब अलग होने को बर्दाश्त नहीं कर सकती। सेप्टिमस के लिए ये सलाह एक मौत की सजा जैसी है। उसे लगता है कि ये डॉक्टर उसकी आत्मा को कैद कर लेंगे और वो ये होने नहीं देना चाहता।
और यहीं से कहानी अपने सबसे दुखद मोड़ पर पहुंचती है। शाम हो चुकी है, क्लैरिसा की पार्टी शुरू होने वाली है,
मेहमान आने लगे हैं, और दूसरी तरफ सेप्टिमस के अपार्टमेंट में
क्या हो रहा है?
एक और डॉक्टर, डॉक्टर होम्स, जबरदस्ती उसके घर में घुसने की कोशिश करता है। सेप्टिमस के लिए यह आखिरी हमला है,
और इन डॉक्टरों के नियंत्रण से बचने के लिए,
अपनी आत्मा की आजादी को बचाने के लिए, वो खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देता है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि वुल्फ इसे कायरता की तरह नहीं दिखाती।
ये हताशा का नहीं बल्कि विद्रोह का एक आखिरी काम था।
हाँ, जैसे वो कह रहा हो, तो मेरे शरीर को कैद कर सकते हो पर मेरी आत्मा को नहीं।
दिल दहला देने वाला पल है, और ठीक उसी वक्त क्लैरिसा की पार्टी पूरे शबाब पर है। घर मेहमानों से भरा है, हंसी मजाक, संगीत,
सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। तभी सर विलियम ब्रैडशॉ और उनकी पत्नी पार्टी में पहुंचते हैं।
वही डॉक्टर।
हाँ, और वो देर से आने की वजह बताते हुए बड़े कैजुअल तरीके से जिक्र करते हैं कि उनके एक मरीज, एक नौजवान ने अभी अभी आत्महत्या कर ली है।
और अचानक वो दो समानांतर कहानियां जो अब तक अलग अलग चल रही थीं,
एक दूसरे से टकरा जाती हैं।
क्लैरिसा ये खबर सुनकर सन्न रह जाती है। पहले तो उसे बहुत गुस्सा आता है
कि कोई उसकी इतनी खूबसूरत पार्टी में मौत और खुदकुशी जैसी बातें क्यों कर रहा है।
हाँ, वो मेहमानों की भीड़ से निकलकर एक छोटे से खाली कमरे में चली जाती है,
और उस अकेले कमरे में उस अजनबी लड़की की मौत के बारे में सोचते हुए उसका गुस्सा धीरे धीरे एक बहुत गहरी सहानुभूति और समझ में बदल जाता है।
वो उस लड़के के साथ एक अजीब सा जुड़ाव महसूस करती है। वो समझ जाती है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा।
किताब में एक बहुत खूबसूरत लाइन है जहां वो सोचती है, मृत्यु एक विद्रोह थी, मृत्यु संवाद करने का एक प्रयास थी, मृत्यु में एक आलिंगन था।
उसे एहसास होता है कि सेप्टिमस ने समाज के सामने घुटने टेकने के बजाय अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी जिंदगी को फेंक कर अपनी आत्मा को बचाया।
और सेप्टिमस की इस मौत के जरिए क्लैरिसा को जिंदगी के मायने एक नई गहराई से समझ में आते हैं।
वो जिंदगी की खूबसूरती और उसके खौफ दोनों को एक साथ कबूल कर लेती है।
हाँ, और ये एहसास उसे अपनी जिंदगी, अपने फैसलों, अपनी अधूरी ख्वाहिशों, सब कुछ स्वीकार करने की ताकत देता है।
और फिर उपन्यास का अंत होता है। क्लैरिसा मेहमानों के पास वापस लौटती है। पीटर वॉल्श उसे देखता है और उसके अंदर खौफ और खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। वो सोचता है,
क्योंकि वो वहां थी।
फॉर देयर शी वॉज। इस एक लाइन में क्लैरिसा का पूरा वजूद उसकी पूरी ताकत से मटाती है। एक औरत जो समाज के दायरे में रहकर भी अपनी आत्मा को बचाए रखने में कामयाब रही।
इस उपन्यास में इतने सारे धागे हैं, समय का धागा, यादों का, अकेलेपन का। वुल्फ दिखाती हैं कि कैसे हम पार्टियों में, भीड़ में होकर भी अंदर से कितना अकेला महसूस करते हैं।
और सच्चा कनेक्शन, एक दूसरे को सच में समझ पाना कितना मुश्किल है।
और ये प्रतीक भी बहुत कमाल के हैं। फूल, जो जिंदगी की नाजुक खूबसूरती के प्रतीक हैं।
और बिग बैन, जो समाज के कठोर नियमों का प्रतीक है।
और खुद पार्टी, जो एक तरफ दुनिया को दिखाने वाला सतहीपन है तो दूसरी तरफ जिंदगी का जश्न भी है।
तो शायद ये उपन्यास हमें यही सिखाता है कि जीवन की सबसे गहरी समझ अक्सर बहुत ही साधारण रोजमर्रा के क्षणों में छिपी होती है।
जैसे फूल खरीदने जाना।
हाँ बिल्कुल।
और ये भी है कि दूसरों के जो अनकहे संघर्ष हैं, उनके प्रति सहानुभूति रखना ही हमें वाकई में एक दूसरे से जोड़ता है,
भले ही हम उनसे कभी मिले भी ना हो।
सही बात।
तो आखिर में सवाल ये रह जाता है, क्या हम सब थोड़ी बहुत क्लैरिसा की तरह नहीं है, अपनी पार्टियों और जिम्मेदारियों में व्यस्त, जबकि हमारे ही शहर में कोई सेप्टिमस अपनी लड़ाई लड़ रहा है और हम उससे पूरी तरह बेखबर है? सोचने वाली बात है।
यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।